एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूँ आपकी पहली मेजबान और आज हम साहित्य की दुनिया में गहरे उतरेंगे।
जी हाँ, एक ऐसे लेखक की बात करेंगे जिनके विचारों ने अंग्रेजी साहित्य को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, 18वीं सदी के इंग्लैंड के एक बड़े, मतलब बहुत बड़े नाम।
और उनकी ये खास किताब लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जिसे लोग अक्सर लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स ही कहते हैं।
हाँ, और ये किताब आज भी, मतलब इतने सालों बाद भी क्यों जरूरी है?
देखिए, ये कुछ ऐसे सवाल उठाती है जो आज भी उतने ही अहम हैं। जैसे, क्या महान कविता लिखने वाले का जीवन भी महान होना चाहिए? क्या हम कला को कलाकार के निजी जीवन या उसके विचारों से अलग करके देख सकते हैं?
ये तो बड़ा सवाल है।
और साहित्य का मकसद क्या है? बस मनोरंजन या कुछ और भी?
सही कहा, ये सवाल तो आज भी हमारे सामने आते हैं जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई गाना सुनते हैं।
बिल्कुल, और जॉनसन का इस पर एक बहुत मजबूत नजरिया था। वो मानते थे कि कवि की रचना को उसके जीवन, उसके चरित्र, उसके नैतिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता।
अच्छा, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं।
हाँ, उन्होंने जीवनी और साहित्यिक आलोचना को, आप कह सकते हैं, एक साथ गूंथ दिया। आज हम इसी अनोखे नजरिए को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो पहले थोड़ा जॉनसन के बारे में जानते हैं। ये सैमुअल जॉनसन 1789-1784 आखिर थे कौन?
डॉक्टर जॉनसन, जैसा उन्हें कहा जाता है, वो अपने जमाने के यानी 18वीं सदी के इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली साहित्यिक हस्ती थे।
इतना कि उस युग को जॉनसन का युग भी कहते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। और वो सिर्फ आलोचक नहीं थे, वो कवि थे, निबंधकार थे, नैतिकतावादी, जीवनीकार, संपादक और सबसे मशहूर एक कोशकार थे, लेक्सिकोग्राफर।
कोशकार मतलब डिक्शनरी बनाने वाले?
हाँ, उनकी एक डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो 1755 में आई, वो एक अद्भुत काम था। उसने अंग्रेजी स्पेलिंग और परिभाषाओं को सदियों तक एक मानक दिया। सोचिए, अकेले ही।
जबरदस्त। और भी कुछ?
उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया, द रैम्बलर, द आइडलर जैसे जर्नल्स में बहुत प्रभावशाली निबंध लिखे, एक दार्शनिक नॉवल रसेलास भी लिखा।
तो उनका ज्ञान बहुत गहरा था?
बहुत गहरा। शास्त्रीय और आधुनिक यूरोपीय साहित्य का विश्वकोशीय ज्ञान था उनके पास, और उनका दिमाग एकदम विश्लेषणात्मक।
और उनके लिखने की शैली के बारे में भी कुछ खास कहा जाता है? जॉनसोनियन स्टाइल?
हाँ, उनकी गद्य शैली स्पष्टता, जोर और एक तरह के लयबद्ध संतुलन के लिए जानी जाती थी, थोड़ी जटिल पर बहुत सटीक।
लेकिन सबसे खास बात जो आपने शुरू में कही, वो उनका नैतिकतावादी होना था।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो मानते थे कि साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि इंसान के चरित्र को बनाने, उसे गढ़ने का एक शक्तिशाली औजार है।
तो ये जो किताब है लाइव्स ऑफ द पोएट्स, ये लिखना उनके लिए स्वाभाविक था?
बिल्कुल, ये उनके लंबे करियर का, कह सकते हैं, निचोड़ था। लंदन के कुछ बुक सेलर्स ने उन्हें ये काम सौंपा जब वो करीब 70 साल के थे।
अच्छा।
उनका पूरा जीवन साहित्य पढ़ने, उसका विश्लेषण करने और उस पर अपनी राय बनाने में ही बीता था। तो साहित्यिक विद्वत्ता, तीखी आलोचनात्मक समझ और गहरा नैतिक दर्शन, ये सब मिलकर उन्हें इस काम के लिए एकदम सही बनाते थे।
और इसी ने अंग्रेजी साहित्य के कैनन को भी आकार दिया।
हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जीवनी और टेक्स्ट के विश्लेषण को अविभाज्य माना।
तो अब आते हैं किताब पर, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स। ये आखिर है क्या?
देखिए, ये मूल रूप से 52 अंग्रेजी कवियों पर लिखे गए निबंधों का संग्रह है। इसमें जीवनी भी है और आलोचना भी।
52 कवि? ये कौन से दौर के थे?
ये मोटे तौर पर 17वीं सदी के मध्य से लेकर 18वीं सदी के मध्य तक, मतलब जॉनसन के अपने समय तक के कवि थे।
और ये काम शुरू कैसे हुआ? आपने बताया था कि बुक सेलर्स ने सौंपा था।
हाँ, शुरू में तो ये एक छोटा सा काम था। कवियों की रचनाओं का एक नया संस्करण छप रहा था, उसके लिए बस छोटी छोटी जीवनियां लिखनी थी।
लेकिन जॉनसन के हाथ में आकर ये कुछ और ही बन गया।
हाँ, उनके हाथों में ये अंग्रेजी साहित्यिक आलोचना के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक बन गया। बहुत महत्वाकांक्षी काम।
महत्वाकांक्षी कैसे?
ये अब्राहम काउली के समय से लेकर जॉनसन के अपने समय तक अंग्रेजी कविता के विकास का एक पूरा ब्यौरा देने की कोशिश करता है। कवियों के जीवन के जरिए एक तरह से राष्ट्रीय साहित्यिक इतिहास लिख दिया उन्होंने।
वाह, तो ये पाठक को कहाँ ले जाती है किताब?
ये पाठक को ऑगस्टन और रेस्टोरेशन इंग्लैंड के साहित्यिक माहौल की एक शानदार यात्रा पर ले जाती है। जॉनसन एक मजबूत गाइड की तरह हैं, जिनकी अपनी राय है और वो उसे रखते भी हैं।
तो हम कवियों के बारे में क्या क्या जानते हैं?
हम उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी गरीबी, पैट्रोनेज यानी संरक्षण के लिए उनका संघर्ष, उनकी राजनीतिक विचारधारा, उनके व्यक्तिगत अहंकार, उनकी दोस्तियां, उनकी नैतिक कमजोरियां, सब कुछ जानते हैं।
और जॉनसन का तरीका क्या रहता है हर कवि के लिए?
उनका तरीका काफी सुसंगत है। पहले वो कवि के जीवन का वर्णन करते हैं, जिसमें किस्से भी होते हैं, चरित्र का विश्लेषण भी, और फिर उसके बाद वो उनकी मुख्य रचनाओं का कठोर आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, उनकी शैली, विषय, भाषा का इस्तेमाल और कुल मिलाकर कलात्मक उपलब्धि क्या रही।
अच्छा, जीवन और फिर रचना।
हाँ, और इस किताब की प्रतिभा इसी बात में है कि जॉनसन इन दोनों हिस्सों को कैसे एकदम सहजता से जोड़ते हैं।
जैसे
कोई उदाहरण?
जैसे अलेक्जेंडर पोप का अहंकार, या जॉन मिल्टन की राजनीति, या रिचर्ड सैविज की बर्बादी, इन सबको उनकी कविता को समझने के लिए जरूरी संदर्भ के तौर पे पेश किया गया है।
तो कला और नैतिकता का रिश्ता यहाँ बहुत गहरा है।
बहुत गहरा। जॉनसन का तर्क यही है कि अगर चरित्र में कोई दोष है तो वो आखिरकार रचना में भी दिखेगा। ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का एक मास्टर क्लास है।
और वो किस तरह की कविता को अच्छा मानते थे? वो नवशास्त्रीय आदर्शों को मानते थे, तर्क, प्रकृति और सार्वभौमिक सत्य। ऐसी कविता जो साफ हो, सुरुचिपूर्ण हो, आसानी से समझ आए और जो सामान्य प्रकृति यानी हम सबके साझा अनुभवों और भावनाओं को दर्शाए।
ठीक है, तो अब कुछ खास जीवनियों पर बात करते हैं ताकि जॉनसन का तरीका और साफ हो जाए। ये किताब अध्यायों में नहीं बल्कि 52 अलग अलग जीवनियों में बंटी है, है ना?
हाँ, कवियों की मृत्यु तिथि के हिसाब से क्रम में। तो चलिए अब्राहम काउली से शुरू करते हैं। ये पहली जीवनी है और बहुत महत्वपूर्ण है।
क्यों महत्वपूर्ण है ये?
क्योंकि जॉनसन इसका इस्तेमाल मेटाफिजिकल कवियों, मेटाफिजिकल पोएट्स के पूरे समूह को परिभाषित करने और उनकी आलोचना करने के लिए करते हैं। ये नाम मेटाफिजिकल जॉनसन ने ही लोकप्रिय किया था।
अच्छा, मेटाफिजिकल कवि जॉन डन जैसे?
हाँ, जॉन डन, काउली और दूसरे। जॉनसन काउली के जीवन के बारे में बताते हैं, अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान वो कैसे रॉयलिस्ट थे, लेकिन असली बात उनकी मेटाफिजिकल कविता की आलोचना है।
क्या आलोचना थी?
जॉनसन का तर्क था कि एक कवि नवीनता की तलाश में ऐसी शैली बना बैठे जो दिमागी तौर पर तो बहुत प्रभावशाली थी पर भावनात्मक रूप से ठंडी और कलात्मक रूप से बनावटी थी।
बनावटी?
हाँ, उनका मशहूर आरोप है कि इनमें सबसे बेमेल विचारों को हिंसा द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब जानबूझकर मुश्किल और अटपटी तुलनाएं की जाती थी,
जिन्हें कंसीट्स कहते थे।
बिल्कुल, जॉनसन मानते थे कि ये दिमागी पहेलियां असल भावना की जगह ले लेती हैं। और जॉनसन के लिए कविता की पहली कसौटी क्या थी? कि वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करे और आम पाठक को अपील करे। मेटाफिजिकल कविता इस पर खरी नहीं उतरती थी।
समझ गई। अब आते हैं जॉन मिल्टन पर। सुना है ये जीवनी बहुत लंबी और जटिल है।
हाँ, ये सबसे लंबी और शायद सबसे जटिल जीवनियों में से एक है। यहाँ जॉनसन एक दुविधा में फंसे दिखते हैं।
कैसी दुविधा?
एक तरफ तो मिल्टन की जबरदस्त प्रतिभा के लिए उनके मन में गहरा सम्मान है, दूसरी तरफ मिल्टन की राजनीति और उनके व्यक्तित्व से उन्हें सख्त नफरत है।
अच्छा, वो मिल्टन को कैसा बताते हैं?
जॉनसन मिल्टन को एक कड़वा और असभ्य गणराज्यवादी कहते हैं, उन्हें घमंडी और जिद्दी बताते हैं।
लेकिन फिर कविता की बात आती है
तो उनका स्वर बदल जाता है। वो पैराडाइज लॉस्ट की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ये वो कविता है जो मानव मन की रचनाओं में डिजाइन के लिहाज से पहला और प्रदर्शन के लिहाज से दूसरा स्थान रखती है।
वाह, पहला और दूसरा स्थान।
हाँ, हालांकि वो इसकी कुछ आलोचना भी करते हैं, और मजेदार बात यह है कि वो कहते हैं कि ये उन किताबों में से है जिसकी सब तारीफ तो करते हैं पर कम ही लोग इसे एक बार से ज्यादा पढ़ने की इच्छा रखते हैं।
ये तो बहुत सटीक बात कह दी,
है ना? और इसके ठीक उलट वो मिल्टन की एक और मशहूर कविता लिज़डस पर बहुत तीखा हमला करते हैं, उसे बनावटी और सच्चे दुख से खाली मानते हैं।
तो ये जीवनी जॉनसन के मूल सिद्धांत को दिखाती है कि कलाकार और कला को अलग देखना पड़ता है कभी कभी।
हाँ, कि एक त्रुटिपूर्ण इंसान भी महान, भले ही पूरी तरह परफेक्ट ना हो, कला रच सकता है। दोनों को अलग अलग देखना होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं जॉन ड्राइडन की। इनके लिए जॉनसन का क्या नजरिया था?
ड्राइडन का जॉनसन बहुत सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा। वो उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा को परिष्कृत किया, उसे संवारा।
और काव्य रूपों के बारे में?
हाँ, जॉनसन मानते थे कि ड्राइडन ने ही उन काव्य रूपों की स्थापना की जिन्हें बाद में ऑगस्टन युग ने और बेहतर बनाया, खासकर हीरोइक कपलेट।
हीरोइक कपलेट, वो दो पंक्ति वाली तुकबंदी।
जी, जॉनसन ड्राइडन को श्रेय देते हैं कि उन्होंने इसे तर्क, व्यंग और कहानी कहने के लिए एक शक्तिशाली और लचीला माध्यम बनाया, और जॉनसन ड्राइडन को अंग्रेजी आलोचना का जनक भी कहते हैं।
अच्छा, तो ड्राइडन एक तरह से शुरुआत थे।
जॉनसन के लिए ड्राइडन अंग्रेजी कविता के आधुनिक मतलब सही युग की शुरुआत थे।
और इस सही युग के शिखर पर कौन था जॉनसन के हिसाब से?
वो थे अलेक्जेंडर पोप। जॉनसन पोप को ऑगस्टन कविता का शिखर मानते थे। पोप की जीवनी, उनकी काव्य शैली और एक महान कवि के रूप में उनकी जगह का एक भावुक बचाव है।
पोप के जीवन के बारे में क्या बताते हैं जॉनसन?
वो पोप के जीवन का ब्यौरा देते हैं, उनका कैथोलिक होना जिससे उन्हें कई सामाजिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनकी शारीरिक बीमारियां, उनकी साहित्यिक दोस्तियां और उनके बहुत सारे झगड़े।
झगड़े?
हाँ, पोप काफी विवादास्पद भी रहे। जॉनसन उन्हें अपार प्रतिभा वाला लेकिन बेहद घमंडी और कभी कभी द्वेष रखने वाला व्यक्ति बताते हैं। फिर वही बात, जीवन और कला।
और कविता के बारे में, पोप की कविता को कैसे आंकते हैं?
आलोचना में जॉनसन तर्क देते हैं कि पोप ने शुद्धता के शिखर को हासिल किया, मतलब ध्वनि, अर्थ और मीटर का एकदम सही सामंजस्य। वो पोप का उन आलोचकों के खिलाफ बचाव करते हैं जो कहते थे कि पोप की रचनाओं में सच्ची कविता वाली ऊंची कल्पना या उद्दत्ता की कमी है।
पर इसी संदर्भ में वो मशहूर सवाल पूछते हैं।
हाँ, वो प्रसिद्ध रूप से दृढ़ते गए हैं, यदि पोप कवि नहीं है तो कविता कहाँ पाई जानी चाहिए। जॉनसन के लिए पोप उस कवि के आदर्श मॉडल थे जो साहित्य के उद्देश्य को पूरा करते हैं, ज्ञान को सुंदर और सुलभ बनाना।
अच्छा, एक और जीवनी है जो थोड़ी अलग है, रिचर्ड सैविज की। इसमें जॉनसन का रवैया थोड़ा व्यक्तिगत है।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जॉनसन और सैविज जवानी के दिनों में दोस्त थे। दोनों ने लंदन में साथ में गरीबी और संघर्ष झेला था।
तो ये जीवनी कैसी है?
ये सैविज के बुखद जीवन का वर्णन है। उनकी कथित अवैध पैदाइश, उनकी बदकिस्मती, स्कैंडल, कर्ज और आखिर में एक देनदार जेल में उनकी मौत। बहुत दुखद कहानी है।
और सैविज की कविता के बारे में जॉनसन क्या कहते हैं?
यहाँ जॉनसन आलोचना में बहुत नरम है। उनका ध्यान साहित्यिक फैसले से ज्यादा नैतिक चिंतन पर है।
तो ये एक तरह की चेतावनी है।
हाँ, ये जीवनी एक शक्तिशाली चेतावनी भरी कहानी है कि कैसे प्रतिभा व्यक्तिगत अस्थिरता और दुर्भाग्य से नष्ट हो सकती है। ये जॉनसन का ज्यादा दयालु, ज्यादा सहानुभूति वाला पक्ष दिखाती है।
और आखिर में थॉमस ग्रे, इनकी जीवनी जॉनसन की सीमाओं को कैसे दिखाती है?
देखिए, ग्रे एक तरह के संक्रमणकालीन कवि थे। उनके काम में आगे चलकर जिसे रोमांटिक थाबाद कहा गया, उसके कुछ तत्व थे।
और जॉनसन का नजरिया?
जॉनसन ग्रे को एक एकांत प्रिय और बहुत ज्यादा मीनमेक निकालने वाले विद्वान के रूप में दिखाते हैं जिन्होंने कविता बहुत कम लिखी।
लेकिन ग्रे की एक कविता तो बहुत मशहूर है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड।
हाँ, और जॉनसन उसकी शानदार तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ये ऐसी छवियों से भरी है जो हर मन में एक दर्पण पाती हैं, और ऐसी भावनाओं से जिनके प्रति हर हृदय एक प्रतिध्वनि लौट आता है।
ये तो जॉनसन की सबसे बड़ी तारीफ हुई।
बिल्कुल, क्योंकि ये कविता उनके आदर्श सार्वभौमिक सत्यों को व्यक्त करने का प्रतीक है।
लेकिन ग्रे के बाकी कामों के बारे में?
बाकी कामों को, खासकर उनके पिंडेरिक ओड्स को, वो अस्पष्ट और बनावटी भाषा से भरा कहकर खारिज कर देते हैं। ये दिखाता है कि जॉनसन जो नई साहित्यिक संवेदनाएं आ रही थीं, उन्हें शायद पूरी तरह अपना नहीं पा रहे थे, उनकी अपनी सीमाएं थीं।
तो इन सभी जीवनियों और आलोचनाओं से कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभरते हैं?
हाँ, कई मुख्य बातें हैं। पहला और शायद सबसे अहम है साहित्य का नैतिक उद्देश्य, मॉरल पर्पस ऑफ लिटरेचर।
मतलब साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं।
जॉनसन का दृढ़ विश्वास था कि किसी भी लेखन का अंतिम मूल्य इस बात में है कि वो पाठक को बेहतर और समझदार बनाने में कितनी मदद करता है। कविता को धर्मपरायणता और सदाचार को बढ़ावा देना चाहिए।
आज ये बात थोड़ी उपदेशात्मक लग सकती है।
हाँ शायद, पर सोचिए, क्या हम आज भी अपनी कहानियों या फिल्मों में कोई संदेश, कोई सीख नहीं ढूंढते? शायद अवचेतन रूप से ही सही।
ठीक है, और दूसरा विषय?
दूसरा, जीवन और कला का अंतर संबंध, इंटरकनेक्शन ऑफ लाइफ एंड आर्ट। जॉनसन की पूरी जीवनी पद्धति इसी बात पर जोर देती है कि कवि का चरित्र उसके काम से अलग नहीं है।
कला कला के लिए वाला सिद्धांत नहीं मानते थे।
बिल्कुल नहीं। कवि का घमंड, जैसे मिल्टन का, या अहंकार पोप का, या लापरवाही सैविज की, ये सिर्फ व्यक्तिगत कमियां नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं उनकी रचना के स्वर, विषय और गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं।
ये बहस तो आज भी बहुत गर्म रहती है ना, कि क्या हमें कलाकारों को उनके निजी जीवन के आधार पर आंकना चाहिए?
हाँ बिल्कुल, जॉनसन का पक्ष तो साफ था। तीसरा, सामान्य प्रकृति का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ जनरल नेचर,
यानी वो कला जो सबके लिए हो।
हाँ, जॉनसन के लिए सबसे बड़ी तारीफ यही थी कि कोई रचना सार्वभौमिक मानवीय अनुभव को अपील करती है। वो उस कविता का समर्थन करते थे जो हम सभी मनुष्यों की साझा भावनाओं, विचारों और स्थितियों से जुड़ी हो। ग्रे की एलिजी इसीलिए एक उत्कृष्ट कृति थी।
सोचिए, कौन सी कहानी इस समय की कसौटी पर खरी उतरती है और क्यों? शायद यही वजह है।
शायद। चौथा विषय है कृत्रिमता या बनावटीपन की आलोचना, क्रिटिक ऑफ आर्टिफिशियलिटी, खासकर मेटाफिजिकल कवियों के संदर्भ में।
जॉनसन को अप्राकृतिक से नफरत थी।
हाँ, उन्होंने मेटाफिजिकल कवियों पर उनके कंसीट्स, विस्तृत दिमागी रूपक के लिए हमला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बुद्धि का उत्पाद है, भावना का नहीं, सहज नहीं है।
आज के दौर में भी स्टाइल ओवर सब्सटेंस के उदाहरण मिल जाते हैं।
हाँ,
है ना?
बहुत। और आखिरी मुख्य बात, एक राष्ट्रीय साहित्यिक कैनन की स्थापना, एस्टैब्लिशिंग अ नेशनल लिटरेरी कैनन।
कैनन मतलब?
मतलब एक तरह की आधिकारिक सूची या परंपरा। इन 52 कवियों को चुनकर, उनके योगदान का मूल्यांकन करके और उन्हें एक ऐतिहासिक कहानी में पिरोकर, जॉनसन प्रभावी रूप से ये परिभाषित कर रहे थे कि अंग्रेजी कविता की महान परंपरा क्या है। उनके चुने हुए कवि लंबे समय तक पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे। हाँ, बहुत सी हैं। उनका लेखन बहुत सटीक और यादगार है।
जैसे कि मेटाफिजिकल कवियों के बारे में उन्होंने जो कहा।
हाँ, वो कहते हैं, सबसे विषम विचारों को हिंसा द्वारा एक साथ जोड़ा जाता है, प्रकृति और कला को उदाहरणों, तुलनाओं और संकेतों के लिए लूटा जाता है। मतलब उनकी चालाकी स्वाभाविक नहीं लगती, जबरदस्ती की और बनावटी लगती है।
और पोप के बचाव में उनका जुनून।
हाँ, वो सवाल, यदि पोप कवि नहीं है तो कविता कहाँ पाई जानी चाहिए? कविता को एक परिभाषा से घेरना केवल परिभाषित करने वाले की संकीर्णता दिखाएगा, ये दिखाता है कि वो बुद्धि, तर्क और नैतिक समझ को भी काव्य कला का केंद्र मानते थे, सिर्फ कल्पना को नहीं।
थॉमस ग्रे की एलिजी की तारीफ भी बहुत खूबसूरत थी।
हाँ,
चर्चयार्ड ऐसी छवियों से भरा है जो हर मन में एक दर्पण पाती हैं, और ऐसी भावनाओं से जिनके प्रति हर हृदय एक प्रतिध्वनि लौटाता है।
ये सार्वभौमिकता के लिए उनकी सर्वोच्च प्रशंसा है, ऐसी सच्चाई कहना जिसे हर कोई अपना समझे।
और मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट पर वो दोहरी राय।
हाँ, वो कहते हैं, पैराडाइज लॉस्ट उन किताबों में से एक है जिसकी पाठक प्रशंसा करता है और नीचा रख देता है और फिर से उठाना भूल जाता है। इसका अध्ययन एक कर्तव्य है, न कि आनंद।
ये दिखाता है कि महान कला की तारीफ करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, वो हमेशा आसान मजा नहीं देती।
तो ये सब 18वीं सदी की बातें हैं। आज की दुनिया में ये कैसे प्रासंगिक हैं? हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आ सकती हैं?
मुझे लगता है कई तरीकों से जॉनसन की ये किताब आलोचनात्मक सोच, इंसान के स्वभाव और संवाद के बारे में कुछ ऐसी बातें बताती है जो कभी पुरानी नहीं होती।
जैसे कि पहला, समग्र निर्णय लेना, होलिस्टिक जजमेंट। जॉनसन हमें सिखाते हैं कि किसी भी रचना का मूल्यांकन करते समय उसके संदर्भ को देखो। इसे किसने बनाया, उसकी प्रेरणाएं क्या थी, उसके पूर्वाग्रह क्या थे, हालात क्या थे।
मतलब सिर्फ सतह पर ना रहें, गहराई में जाएं।
बिल्कुल। इससे हमें सतही फैसलों से आगे बढ़कर एक ज्यादा सूक्ष्म समझ विकसित करने में मदद मिलती है, चाहे वो कोई न्यूज रिपोर्ट हो, कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो या कोई कलाकृति।
और दूसरा?
दूसरा, संचार में स्पष्टता का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी। जॉनसन ने स्पष्टता, तर्क और सटीकता का समर्थन किया। ये आज की जिंदगी के लिए एक बहुत जरूरी सबक है,
खासकर आज के सूचना विस्फोट के युग में।
हाँ, जटिल विचारों को साफ साफ कहने की क्षमता अनमोल है, और दूसरों की बातों को ध्यान से, आलोचनात्मक तरीके से समझना भी उतना ही जरूरी है।
तीसरा,
चरित्र और रचना के बीच का संबंध। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने मूल्य और हमारी नैतिकता हमारे काम को, हमारे रिश्तों को, हमारी बातचीत को कैसे प्रभावित करते हैं। उत्कृष्टता सिर्फ प्रतिभा की बात नहीं है, बल्कि अनुशासन, ईमानदारी और चरित्र का भी नतीजा है।
चौथा, आलोचनात्मक पठन कौशल विकसित करना, डेवलपिंग क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स।
जॉनसन हमें सक्रिय रूप से और आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना सिखाते हैं, तर्क का विश्लेषण करना, सबूतों का मूल्यांकन करना, शैलीगत विशेषताओं को पहचानना, ये आज बहुत जरूरी स्किल है।
और पांचवा,
कला के उद्देश्य पर स्थायी बहस, एंड्यूरिंग डिबेट ऑन द पर्पस ऑफ आर्ट। ये किताब पाठकों को एक बुनियादी सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करती है, कला आखिर है किस लिए? मनोरंजन के लिए, चुनौती देने के लिए, आराम देने के लिए या कुछ सिखाने के लिए?
जॉनसन का मजबूत नैतिक पक्ष हमें अपने खुद के विश्वासों को साफ करने के लिए प्रेरित करता है ना?
हाँ, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कला से क्या चाहते हैं और क्यों।
तो अगर हम लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट से सबसे मूल्यवान सबक लेना चाहें तो वो क्या होगा?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि साहित्य या कोई भी कला वो गहरी मानवीय चीज है। ये हमारी तरह ही कमियों वाले, संघर्ष करने वाले इंसानों द्वारा बनाई जाती है। और इसका असली मूल्य इस बात में है कि ये हमारी साझा मानवीय स्थिति से, हमारी भावनाओं और अनुभवों से कितना जुड़ पाती है।
ये किताब ये भी सिखाती है कि महान आलोचना कोई सूखी अकादमिक कसरत नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कला के काम और उसके बनाने वाले के जीवन दोनों के साथ एक जोरदार नैतिक और बौद्धिक जुड़ाव है।
पाठक को कला के प्रति अपने नजरिए में बदलाव महसूस करना चाहिए।
हाँ, निष्क्रिय उपभोग से सक्रिय पूछताछ की ओर बढ़ना, संदर्भ देखना और स्थायी मानकों से आंकना।
मेरे लिए जो सबसे आश्चर्यजनक बात थी वो यही थी कि जॉनसन ने नैतिकता को कलात्मक मूल्यांकन का इतना अभिन्न अंग कैसे माना। आज शायद हम कला और नैतिकता को ज्यादा अलग करके देखते हैं।
हाँ, ये एक बड़ा फर्क है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बात बहुत पसंद आई कि जॉनसन कवियों के जीवन की मुश्किलों, गरीबी, संरक्षण पर निर्भरता, राजनीतिक सेंसरशिप को भी उजागर करते हैं।
इससे साहित्यिक पेशे की वास्तविकताएं सामने आती हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ कविताओं के बारे में नहीं है, बल्कि जीने की कला, संघर्ष करने की कला के बारे में भी है। ये दिखाता है कि कला अक्सर आसान हालात में पैदा नहीं होती।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।